जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय
गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
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 जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त
ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपां सागर जातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनवरमनो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा।
तो हम कंटिन्यू रीडिंग करेंगे चैतन्य चरितामृत से। तो हम आखिरी क्लास में सुन रहे थे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी की जो ग्लोरीज हैं, तो भगवान का ये नेचर है कि वो अपने भक्तों को अपने से भी महान बनाना चाहते हैं, या उनका जो ग्लोरीज है वो सारे संसार में विदित हो, इसके लिए कार्यरत होते हैं। चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी को, माधवेंद्रपुरी के बारे में नित्यानंद प्रभु आदि भक्तों को बता रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कितने भाग्यवान है ये कि जिनको गोपाल आकर स्वयं स्वप्न आदेश देते हैं, जिनके लिए खीर आदि चुराते हैं, और वही माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम समय में जब शरीर त्यागना होता है तब विशेष रूप से कृष्ण के विरह का अनुभव करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसे माधवेंद्रपुरी एक श्लोक का उच्चारण कर रहे थे जिसमें श्रीमती राधा रानी की जो भावना है, श्रीमती राधा रानी का जो मूड है उसको प्रकट कर रहे थे। आये दीन दयाद्र नाथ है मथुरा नाथ, कि हे मथुरा नाथ कि मैं कब आपको देख पाऊंगी, और वो समय कब आएगा, और आपको न देखने के कारण मेरा जो हृदय है वो जल रहा है या विचलित हो रहा है। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी की इस दशा को चैतन्य महाप्रभु प्रकट कराते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार माधवेंद्र पुरी कृष्ण के नित्य संगी हैं, क्योंकि ये श्लोक केवल श्रीमती राधा रानी और माधवेंद्र पुरी जानते थे, आस्वादन करते थे इस भावना का, इस मूड का, कृष्ण के विरह का, और तीसरे कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, ना ही चौथा जन, चौथा व्यक्ति कोई नहीं था जो इस भावना को आस्वादन कर सके। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने जब ये श्लोक बताया तो स्वयं भावावेश में आ गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। नित्यानंद आदि चैतन्य महाप्रभु को उठाते हैं। यही श्लोके उघाड़िल प्रेमेर कपाट, गोपीनाथ सेवक देखे प्रभुर प्रेमनाट। तो ये जो श्लोक है जिसने जो कृष्ण प्रेम आज तक मतलब क्लोज्ड करके रखा था, हाँ, तो इसका जो द्वार है, डोर्स है, ये खोल दिए चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ, और गोपीनाथ के जो सेवक है वो देख रहे थे। तो वास्तव में ये जो कृष्ण प्रेम है ये हजारों हजारों साल एक भंडार में रखा हुआ है, स्टोर हाउस में, लेकिन जब ये पंच तत्व आते हैं तो ये क्या करते हैं, सबको खोल देते हैं, खुद इस वो उसको खाते हैं, उसका आस्वादन करते हैं और इस प्रेम के भंडार को खोल के सारे लोगों को, सारे जीवों को प्रदान करते हैं। लोकेर संगट देखी प्रभुर बाह्य हैला, ठाकुरेर भोग सरी आरती बाजिला। तो बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए थे वहां चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जब अपने पुनः एक्सटर्नल चेतना में आ जाते हैं, और उसी समय भोग ऑफरिंग हो चुका था और बहुत जोर से आरती की शुरुआत हो गई थी। ठाकुरे शयन कराया पुजारी हैल बाहिर, प्रभु रागे आनि दिल प्रसाद बारा खीर। तो इतना वो जो पुजारी आदि थे चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना अधिक उनका आदर और सम्मान की भावना प्रकट हुई कि जितने 12 पॉट गोपीनाथ को भोग लगाते थे वो 12 के 12 पॉट खीर के किसको देते आकर? चैतन्य महाप्रभु को लाके देते हैं। खीर देखी महाप्रभु आनंद वाड़िला, भक्त गने खाया ते पंच क्षीर लैला। तो इतना सारा खीर दिया तो महाप्रभु एक तो आनंदित हुए, कौन नहीं आनंदित होगा, और वो भी गोपीनाथ का अमृत के लिए खीर। हाँ, लेकिन महाप्रभु ने कितना स्वीकार किया? आवश्यक था उतना ही, अत्याहार नहीं, क्योंकि वो सन्यासी थे। हाँ, वो अपने आचरण से सिखाते, ठीक है दूसरे कोई दे रहे हैं, लेकिन हमें कितना स्वीकार करना चाहिए? जितना आवश्यक है उतना। उनको 12 खीर के पॉट दिए, छोटे छोटे नहीं है कि इतना सा, वो तो बड़े बड़े होंगे। तो उनमें से चैतन्य महाप्रभु ने 5 स्वीकार किए। क्यों 5 स्वीकार किए? क्यों? चैतन्य महाप्रभु के साथ और 4 थे। कौन कौन थे 4? जगदानंद, दामोदर, मुकुंद और नित्यानंद प्रभु और लॉर्ड चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु 5 वो पॉट लेते हैं। सातक्षीर पुजारी के बाहुडिया दिला, पंचक्षीर पंच जने माटिया खाईला। तो पुजारी को 7 जो पात्र वापस देते हैं और जो 5 खीर के जो पात्र हैं ये 5 भक्त खाते हैं। गोपीनाथ रूपे जदि करिया छे मोजान, भक्ति देखाई ते कैला प्रसाद बक्षान। तो वो चैतन्य महाप्रभु और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, वो गोपीनाथ के रूप में ऑलरेडी इस खीर को खा रहे हैं, एक बार नहीं खा रहे, रोज ही उस खीर को खा रहे हैं। लेकिन ये जो भक्तिमय भावना को चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं और भक्त के रूप में अभी उसको खाते हैं, तो दोनों चीजें हैं। हाँ, क्योंकि वो ये आस्वादन करना चाहते हैं कि प्रसाद में क्या टेस्ट होता है, क्योंकि उनको तो भोग खाने की आदत है ना। लेकिन जब वो प्रसाद में कन्वर्ट हो जाता है तो कृष्ण खाते नहीं कभी। हाँ, लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसी चीज को जानने के लिए आए कि क्या आनंद है मेरे प्रसाद जो बन जाता है उसमें क्या आनंद है। तो चैतन्य महाप्रभु दोनों चीजों का आस्वादन कर रहे, भोग का भी और प्रसाद का भी। भोग का किस रूप में कर रहे हैं? गोपीनाथ के रूप में, और प्रसाद का स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। नाम संकीर्तने से ये रात्रि गुआइला, मंगल आरती देखी प्रभाते चलीला। तो रात्र वहां गवाए, वहां रहे गोपीनाथ के आलय में, और सुबह मंगल आरती का दर्शन करके प्रभाते चलीला। हाँ, मंगल आरती अटेंड करना कंपलसरी था उनके ग्रुप के लिए भी। गोपाल गोपीनाथ पुरे गोसाई रघुन, भक्त संगे श्री मुखे प्रभु कैला आस्वादन। तो गोपाल का, गोपीनाथ का और पुरी गोसाई का, इन तीनों का गुण किसने बोला था? चैतन्य महाप्रभु ने। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों के संग में इन तीनों के क्वालिटीज को, इन तीनों के ग्लोरीज को आस्वादन करते हैं। यही तो आख्याने कहिला दोहार महिमा, प्रभुर भक्त वात्सल्य आर भक्त प्रेम सीमा। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मैंने अभी ये जो आख्यान आपको बताया चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, गोपाल गोपीनाथ और माधवेंद्रपुरी का जो वर्णन हुआ है, इसमें दोनों की महिमा मैंने बताई है। एक महिमा क्या है कि प्रभुर भक्त वात्सल्य, कि कृष्ण का अपने भक्त के प्रति कितना अधिक वत्सलता है। उसके लिए भगवान किसी भी चीज को ये कर सकते हैं, त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरा क्या है, भक्त प्रेम सीमा, कि जो भक्त है इतना अधिक प्रेमी होता है भगवत प्रेमी, कि उस प्रेम को, प्रेम के कारण वो भगवान की किसी भी प्रकार से सेवा करना चाहता है। वो हाईएस्ट सीमा तक वो पहुंच जाता है भगवत सेवा के लिए। जैसे प्रभुपाद हैं, 70 साल की आयु में वो चले गए, इसको क्या कहेंगे? भक्त प्रेम सीमा। अमेरिका कौन जाना चाहेगा? तो ये क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति उनके हृदय में इतना गहरा प्रेम है, प्रेमी भक्त है, जो वृंदावन को भी छोड़ के न्यूयॉर्क जैसे सिटी में चले जाते हैं। तो ये प्रेम का प्रदर्शन है। प्रेम कैसे प्रकट होगा? सेवा के द्वारा। हम कहेंगे नहीं प्रेम है, भगवान से प्रेम है, लेकिन सेवा के द्वारा वो प्रेम प्रकट होता है। यदि सेवा नहीं कर रहे हैं हम भगवान के, हाँ, तो प्रेमी भक्त कैसे हैं? तो माधवेंद्र पुरी आदि तो महान प्रेमी भक्त थे, उनके लिए क्या आवश्यकता थी कि अरे कहाँ उधर जाए चंदन लाए प्रभुपाद, कहाँ अमेरिका जाए सबके लिए प्रसाद बनाए, उनका छोटा प्लेट धोए, इतना कष्ट क्यों? क्योंकि उनका भगवान के प्रति बहुत गहरा प्रेम था, और इसी प्रेम के कारण भगवान अपनी वत्सलता को निभाने में भूलते नहीं है। तो ये दो, इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब ही है कि भक्त और भगवान के बीच में आदान प्रदान। भगवान अपनी वत्सलता दिखाते हैं और भक्त हर समय अपने प्रेम की जो सीमा है या सेवा की भावना दिखाता है, इसी को भक्त कहते हैं। भक्ति का मतलब ही है कि भक्ति क्या है? अफेयर ऑफ द हार्ट, हृदय का अफेयर है। श्रद्धा युक्त हैया यहा सुने जय जान, श्री कृष्ण चरण से ही पाए प्रेम धान। तो श्रवण करना श्रद्धा के साथ, श्रद्धाया सुनवताम नित्यम। परीक्षित महाराज भागवतम के दूसरे स्कंद में जब शुकदेव गोस्वामी से निवेदन करते हैं कि आप मुझे सुनाओ, क्योंकि ये कृष्ण कथा का स्वभाव क्या है कि केवल अपने कानों को व्यक्ति देने मात्र से, भगवान को उनको सुनते रहने मात्र से, एक तो क्या है वो आघाता नहीं है। आघाता मतलब बोर नहीं होता, परेशान नहीं होता, हाँ, क्योंकि वो और चाहता है, इसको क्या करता है वो और सुनना चाहता है। तो श्रद्धा या सुनवताम नित्यम, परीक्षित महाराज ने कहा सुनना है तो कैसे? श्रद्धा के साथ, श्रद्धा युक्त हैया यहाँ सुने जय जन, जो श्रद्धा के साथ सुन रहा है। और तो क्या होगा, ना अति दीर्घे न भगवान विशते हृदय, कि टाइम नहीं लगेगा उस व्यक्ति के हृदय में भगवान निवास करने के लिए। हाँ, ये सबसे इजी वे परीक्षित महाराज कहते काले न आती दीर्घे न भगवान विषते हृदय की, समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी है कृष्ण उस भक्त के हृदय में निवास करेंगे। और ये देखा गया है कि भगवान के बारे में सुनते रहने से आध्यात्मिक जीवन की सारी समस्याएं कम हो जाती है, और जितना श्रवण कम होगा उतना आध्यात्मिक जीवन हमें टफ लगने लगता है और हृदय की कई समस्याएं उदित हो जाती है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आ चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि रूप और रघुनाथ कि उनकी कृपा की मैं आकांक्षा करता हूं, और ये चैतन्य चरितामृत को मैं वर्णन कर रहा हूं या नरेट कर रहा हूं उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को वर्णित कर रहे हैं, क्योंकि ये लीला वो क्यों सूत्रबद्ध करते हैं, क्योंकि वृंदावन के भक्त इन सबको सुनना चाह रहे थे। गोविंद देव के एक महान पुजारी थे पंडित हरिदास, जो तो वे हरिदास पंडित आदि जितने भी जीव गोस्वामी के समय जितने भी वैष्णव हुआ करते थे वो सारे वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित चैतन्य भागवत को डेली सुना करते थे। कहाँ सुना करते थे? वो गोविंद देव टेम्पल में सुना करते थे रोज शाम को। तो चैतन्य भागवत को कई बार सुनने के बाद उन भक्तों के हृदय में ये भावना आई कि अरे हमें चैतन्य महाप्रभु की जो जगन्नाथपुरी आदि जो लीलाएं हैं उनको हमें श्रवण करना है। तो उन्होंने देखा कि कौन इसको सूत्रबद्ध कर सकता है, तो सबका एक और उंगली गई। कौन थे वो? कृष्णदास कविराज। क्योंकि कृष्णदास कविराज नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र भक्त थे, नित्यानंद प्रभु के द्वारा उनको वृंदावन भेजा गया था और वो आकर उन्होंने राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी का आश्रय लिया था, जिनसे वो शिक्षा प्राप्त करते थे और रोज चैतन्य चरितामृत से राधा कुंड के तट पर कृष्णदास कविराज सुना करते थे। क्योंकि 3 घंटा उनका कंपलसरी था, 3 घंटा या 1 घंटा समथिंग। रघुनाथ दास गोस्वामी की जो साधना का वर्णन कृष्णदास कविराज ने आदि लीला में किया है उसमें वो कहते हैं कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो रोज गौरांग महाप्रभु की चर्चा किया करते थे, रोज गौर कथा करते थे, और जिनको सुनने के लिए राधा कुंड में जो वैष्णवगण है वो आते थे। तो कृष्णदास कविराज सबसे आगे बैठते थे और वैसे नहीं बैठते थे, एक नोटबुक लेके बैठते थे। प्रेम विलास आदि ग्रंथों में वर्णन आया है कि कैसे इस ग्रंथ को कंपाइल किया उन्होंने। और फिर जैसे जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो साक्षात देखी थी महाप्रभु की लीलाएं, और दूसरा स्वरूप दामोदर के नोट्स उनके पास थे, जिसको स्वरूप दामोदर का कड़छा भी कहते हैं, उसी नोटबुक के आधार डेली डायरी मेंटेन करते थे। कौन? स्वरूप दामोदर। तो उसी डेली डायरी को मुरारी गुप्त ने इस रूप में दिया, चैतन्य चरिता नाम का सबसे पहला ग्रंथ लिखा संस्कृत में। तो संस्कृत में होने के बाद उसी ग्रंथ को थोड़ा सरल रूप देने के लिए जो नरहरि सरकार है उन्होंने अपने शिष्य लोचन दास ठाकुर को बोला कि आप बंगाली में जो पांचाली फॉर्म है बंगाली लैंग्वेज का उसमें आप ये करो, ताकि हर लोग उसको गान कर सकते हैं बंगाली लोग। तो उन्होंने भी चैतन्य मंगल भी लिखा गया था बाद में। तो इस प्रकार से ये सुनने के लालसा जब इन भक्तों के हृदय में उदित हुई तो वो भक्त कृष्णदास कविराज को अप्रोच करते हैं, और कृष्णदास कविराज अपने आप को बहुत ये समझते थे कि मैं ये सेवा के लिए क्वालिफाइड नहीं हूं, लेकिन भक्त मुझे आदेश दे रहे हैं उसका मतलब वो मुझे क्या दे रहे हैं, सेवा को निभाने की शक्ति भी प्रदान कर रहे हैं। ये 2 चीजें हैं। आध्यात्मिक गुरु जब उस शिष्य को आदेश देते हैं तो उसके साथ उसको क्या देते हैं, शक्ति और क्वालिफिकेशन देते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज जब जगन्नाथ दास बाबा जी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अप्रकट हुए तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उस समय भी एक व्रत लिया था कि शत कोटि नाम यज्ञ, मतलब एक अब्ज 1 बिलियन नाम वो ले रहे थे, रोज 3 लाख नामों का जप करते थे, और इनका व्रत था 9 साल के लिए, 9 साल के लिए रोज 3 लाख नाम लेते थे, उनको लगा 9 साल 4 महीने समथिंग डेली। भक्ति सिद्धांत महाराज एक दिन मायापुर से बाहर नहीं गए 9 साल, और रोज हरि नाम लेते रहे, क्योंकि नाम नामे प्रस्फुटित हय रूप गुण लीला, कि नाम से ही उस भक्त के हृदय में रूप गुण लीला क्या होंगे, प्रस्फुटित होंगे, हरि नाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने इतना कठोर व्रत लिया कृष्ण नाम लेने का, कितने नाम, एक अब्ज, ड्रीम है ये, 16 माला नहीं, 64 राउंड्स डेली विदाउट फेल, और भोजन बिल्कुल ही नॉर्मल, और अधिक से अधिक नाम संख्या, वो भी घास का एक कुटिया बना के, मायापुर उस समय टेम्पल नहीं था, जो जन्म स्थान है निमाई जन्म स्थान, तो वहां सामने ही घास का कुटिया बना के वहां रहते थे, जब बारिश भी आता था तो भक्ति सिद्धांत महाराज छाता लेके अपना जप किया करते थे। तो एक दिन ऐसे बैठे तो चैतन्य चरितामृत का एक पन्ना फटा हुआ उनकी ओर आया, तो उन्होंने देखा तो उसमें ये था उपदेश, था 4 चीजों, सनातन शिक्षा में से था कि सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप प्रचार करो, ग्रंथ निर्माण करो, और लीला स्थलियों की खोज करो, ऐसी 4 चीजें थी, वैष्णव सदाचार का स्थापना करो। तो उसको देखते ही भक्ति सिद्धांत महाराज ने वो सोचा कि ये चैतन्य महाप्रभु मुझसे ये सेवा चाहते हैं कि मैं निकलू बाहर। तो उनके मन में ये आया कि अरे अरे, मुझ में तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता, मेरे पास धन नहीं है, कॉन्टेक्ट्स नहीं है, कैसे मैं जाऊं यहाँ से बाहर, नहीं नहीं मुझे अपना ऐसे ही ठीक है। तब रात को पूरा आचार्य परंपरा उनके स्वप्न में आती है, गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, पंच तत्व आदि, आप निकलो, हम प्रोवाइड करेंगे सब चीजें, आप कलकत्ता जाओ। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने फिर गौर पूर्णिमा के दिन संन्यास लिया गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की फोटो से। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब वैष्णव या गुरु हमें आदेश देते हैं, उसके साथ साथ हमें वो क्या कर देते हैं, योग्यता देते हैं, योग्यता विचारे किछु नाए पारे, कि योग्यता वगैरह नहीं है, हे गुरुदेव आप वो योग्यता प्रदान कीजिए। तो आध्यात्मिक गुरु वो शक्ति देते हैं, गौर गोविंद महाराज जब उनको पहली बार भुवनेश्वर भेजा तो उनके पास कोई चीज नहीं थी, ना पैसे था ना कोई उनके साथ था, प्रभुपाद ने कहा संन्यास मैंने दिया है आपको, तो मैं भी अकेले निकलो, तो वो जाते हैं अकेले, वो कहते कि प्रभुपाद मैं अकेला हूं, तो वो प्रभुपाद कहते नहीं नहीं वैष्णव अकेला नहीं होता, कहते प्रभुपाद आप वैष्णव हो, मैं नहीं हूं वैष्णव। तो गुरु शिष्य के साथ उनकी आज्ञाओं के रूप में होता है, वाणी के रूप में होता है। प्रभुपाद कहा करते थे कि हर समय मुझे यह अनुभव होता है कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरे नित्य संग में है। तो जब गौर गोविंद महाराज को भेजा तो क्योंकि प्रभुपाद ने आज्ञा दी, योग्यता दी, और क्या दिया, शक्ति संचारित की। रूप गोस्वामी को जो एक शिक्षा प्रेजेंट करने की चैतन्य महाप्रभु ने क्या की, शक्ति संचारित की, तभी वो रूप शिक्षा का प्रणयन किया, आगे चलकर इतने ग्रंथों को उन्होंने लिखा। रामानंद राय से इतना वंडरफुल क्लास दिलवाया चैतन्य महाप्रभु ने, दे दो आप क्लास, दो बैठो मैं श्रवण करूंगा। बल्कि महाप्रभु तो सारे चीजों के ज्ञाता है, लेकिन रामानंद राय के द्वारा क्या बुलवाते, वो बुलवाते हैं उस चीज को। तो रामानंद राय शुरू करते हैं बोलना, तो चैतन्य महाप्रभु उनको शक्ति और योग्यता देते हैं। हरिदास ठाकुर के जीवन में भी वही आता है, जब चैतन्य महाप्रभु एक दिन समंदर स्नान करने के लिए गए जगन्नाथपुरी में, तो एक दिन महाप्रभु ने ऐसे विचार किया कि आज सुबह सुबह हरिदास ठाकुर को मिलता। स्नान करके जब वापस आए, हरिदास ठाकुर के पास बैठे, तो हरिदास ठाकुर को कहा कि हरिदास आप मुझे नाम की महिमा सुनाओ। तो कहते प्रभु जी आप अब क्या कह रहे हो मुझे, ये विषय, मैं तो आदम हूं, आप तो जानते हो मुझे कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, हाँ नहीं नहीं वो चैतन्य महाप्रभु को देखकर हरिदास ठाकुर रोने लगे, आप मुझसे क्यों ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ ये सब मैं नहीं सुना सकता, मेरे पास है ही नहीं। हाँ तो चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं नहीं हाँ तुम क्या हो, तुम में दो गुण बहुत अच्छे हैं, एक तो तुम नाम का आश्रय तुमने लिया है और उसके अलावा तुम प्रचार में भी प्रवीण हो, एक्सपर्ट हो प्रीचिंग में, हाँ वेश्या को भी प्रचार किया है और हाँ तो कई माया देवी को दीक्षा दिया है कृष्ण नाम का, और तो कई सारे गांवों में उन्होंने ये किया था प्रचार आदि। तो ऐसे हरिदास ठाकुर को कहा कि नहीं, तो हरिदास ठाकुर मतलब हरिदास ठाकुर जोर जोर से रोने लगते हैं और रोते हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरते हैं, कहते नहीं नहीं प्रभु मैं नहीं बोल सकता, नहीं आप बोलना होगा, आप शुरू करो। तो ठीक है, तो हरिदास ठाकुर बोलने लगे तो हर एस्पेक्ट जो हरि नाम से संबंधित है वो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, प्रेजेंट किया। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते थे और हरिदास ठाकुर उत्तर दिया देते थे। इस प्रकार से शक्ति देते हैं आध्यात्मिक गुरु वैष्णव, जब उनके आदेशों का पालन करने की भावना हम हमारे हृदय में रखते हैं। तो ऐसे जो कृष्णदास कविराज हैं जिन्होंने इस चीज को कंपाइल किया चैतन्य चरितामृत को, और सारे वैष्णव की आज्ञा से गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण, तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, आध्यात्मिक जीवन का विघ्न का विनाश करना है, चाहे हम हरि नाम करते हैं सेवा आदि करते हैं, तो इन तीनों का स्मरण करने मात्र से आध्यात्मिक जीवन के जो ब्लॉकेज है वो खुल जाते हैं। किनका स्मरण करने से, गुरु वैष्णव और भगवान तीनेर स्मरण, चैतन्य चरितामृत शुरू करते ही ये चीज बोलते हैं। हाँ क्योंकि मैं ये शुरू करने जा रहा हूं तो इसमें जो विघ्न आएंगे बाधाएं आएंगे हाँ केवल इनके स्मरण से वो दूर हो सकती है, गुरु भगवान और गुरु भगवान वैष्णव तीनेर स्मरण। हाँ तो इन तीनों का स्मरण इतना शक्तिशाली है कि जो साधक है उसके हृदय में जो अनर्थाज है उनको दूर करते हैं, भक्तिपात को सरल बना देते हैं इन तीनों का स्मरण। इसलिए पूरे हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम आदि है प्रभुपाद ने इन तीनों को जोर दिया है। उठते हम किसका स्मरण करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, फिर हरि नाम आदि लेते हैं, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और फिर वैष्णव को प्रणाम करते हैं। तो प्रभुपाद ने इन तीनों चीजों को हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में ऐड कर दिया है, जो किसने, कृष्णदास कविराज ने कहा इन तीनों का स्मरण। तो वैष्णव प्रणाम वो एक ये नहीं है कि चलो अभी सब हो गया तो करते हैं, वो शक्ति देने वाली चीज है आध्यात्मिक जीवन में तीनेर स्मरण। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज बहुत ही एक्सपर्टली और सिस्टमेटिकली चैतन्य महाप्रभु का जो ये अमृतमय चरित्र है वो वर्णन कर रहे हैं, और कृष्णदास कविराज के मुख से सुनना ही अपने आप में बहुत बड़ी देन है। कृष्णदास कविराज ने, क्योंकि वैष्णव की ये खासियत है कि जो डीप सब्जेक्ट है उनको वो क्या करते हैं, बहुत सरल करके बद्ध जीवों के लिए प्रस्तुत करते हैं। अब कृष्णदास कविराज ने जो चैतन्य चरितामृत में अलग अलग जो सिद्धांत शिक्षाएं प्रस्तुत की हैं, वो वास्तव में बहुत टफ है, लेकिन उन्होंने इतने सरल रूप में चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को प्रेजेंट किया कि जो नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी उनकी शिक्षाओं को सही रूप से समझ सकता है। तो चैतन्य चरितामृत में दोनों चीजें हैं कि कृष्णदास कविराज ने केवल लीला ही नहीं, हर लीला के साथ क्या किया है, सिद्धांत प्रस्तुत किया है। हाँ माधवेंद्र पुरी की इस लीला से इस सिद्धांत को स्थापित किया कि किस प्रकार से ये दो चीजें, कौन सी दो चीजें,
भगवान
भगवान की वत्सलता
भक्त की प्रेम सीमा,
हाँ भक्त की परम सीमा, सेवा की सीमा। तो भक्त हाँ और भगवान के बीच एक कॉम्पिटिशन, सेवा सर्व करने का। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज इस चीज का वर्णन करते हैं। और कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, मध्य लीला का चैप्टर 5, जिसका नाम है द एक्टिविटीज ऑफ साक्षी गोपाल। तो साक्षी गोपाल का दिव्य चरित्र है। और अभी अलग अलग है, यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु आदि को सुनाया, लेकिन अभी साक्षी गोपाल का कार्यकलाप कौन सुनाएंगे? नित्यानंद प्रभु। हाँ दोनों है, यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु से सुना, अभी चैतन्य महाप्रभु कैन से सुनेंगे? नित्यानंद प्रभु से सुनेंगे। तो इस प्रकार से श्रवण कीर्तन पूरे यात्रा में क्या हो रहा है उनका? श्रवण कीर्तन। यात्रा ऑर्गेनाइज इसीलिए होती है क्योंकि इस स्थान में नाना प्रकार के चीजें हैं जो हमारे मन को और तन को ले जाने वाली है। स्थाने स्थाने कहाँ कहाँ ले जाती है? शरीर को यहाँ बैठे हैं तो मन ले जाता है, रोज ऑफिस ले जाता है ये शरीर, लेकिन यात्रा में जाते हैं तो फिर टोटली आप वहां के हो जाते हो। तो वहां केवल एक ही चीज है, हाँ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो वहां केवल श्रवण कीर्तन का बढ़ावा, अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन। तो ऐसे साक्षी गोपाल चैतन्य महाप्रभु की इस यात्रा में चैतन्य महाप्रभु स्वयं सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। तो आज दो वैष्णवों का ये भी है, क्या है आज? तिरुभाव और एक आविर्भाव। रामचंद्र कविराज का क्या है? तिरुभाव। और गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव। तो ये दो वैष्णव, हाँ एक उनके परम गुरु है, रामचंद्र कविराज के गुरु थे श्रीनिवास आचार्य, और श्रीनिवास आचार्य के गुरु थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इतने अद्भुत पर्सनालिटी थे रामचंद्र कविराज कि नरोत्तम दास ठाकुर उनकी संग के लिए हमेशा लालायित रहते थे। और बहुत बड़े विद्वान थे रामचंद्र कविराज, जो बंगाल में रहा करते थे, श्रीखंड में उनके जो पिता है चिरंजीव सेन उनका घर था, उनके मदर का नाम सुनंदा सुनंदा था। तो ऐसे रामचंद्र कविराज का जन्म होने के बाद कुछ समय में उनके पिता का देहांत होता है और उनके पिता चैतन्य महाप्रभु के बहुत करीब के एसोसिएट थे, संगी थे, जो जगन्नाथपुरी जाया करते थे चिरंजीव सेन अपने पत्नी के साथ चैतन्य महाप्रभु को चातुर्मास में मिलने के लिए। तो ऐसे रामचंद्र कविराज जो उनके एक ब्रदर थे, छोटे ब्रदर, उनका नाम था क्या? गोविंद कविराज। तो ये रामचंद्र कविराज और गोविंद कविराज ये दोनों भाई थे। और दोनों क्योंकि उनके जो मैटरनल अंकल हैं, ग्रैंडफादर, तो उनके ये थे, वो दुर्गा देवी के भक्त थे। तो ये दोनों भी दुर्गा के ही पूजा उपासना आदि करते थे। तो लेकिन जब रामचंद्र कविराज को श्रीनिवास आचार्य का संग प्राप्त हुआ तो श्रीनिवास आचार्य के संग से रामचंद्र कविराज महान वैष्णव बने। इतने महान वैष्णव बने कि जीव गोस्वामी इनके गीतों को सुनने के लिए वृंदावन में लालायित होते थे और लेटर लिखा करते थे रेगुलर जीव गोस्वामी, कब इनका नया नया एडिशन, नया पोयम कौन से आ रहे हैं, नए गीत कौन से आ रहे हैं। तो रामचंद्र कविराज एक व्यक्ति के द्वारा भेजा करते थे, गोविंद कविराज, रामचंद्र कविराज, हाँ। तो वह जीव गोस्वामी भक्तों के बीच में बैठकर उसको आस्वादन करते थे। इतना अद्भुत काव्य था रामचंद्र कविराज का। ऐसे रामचंद्र कविराज जो श्रीनिवास, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि ये तो वैवाहिक जीवन में गए ही नहीं रामचंद्र कविराज, क्योंकि मैरिज पार्टी उनका जब जा रहा था तो मैरिज टीम जब जा रहे थे तो ये बैठे थे वो पालकी में, जाते जाते इन्होंने देखा कि वहां उस वृक्ष के नीचे श्रीनिवास आचार्य बैठ के भागवतम का प्रवचन दे रहे हैं। और प्रवचन के कई शब्द रामचंद्र कविराज दूल्हा बने थे उनके कानों में चले गए। हाँ तो पूरे और क्या थे वो कहते थे जी, श्रीनिवास आचार्य ने कहा कि देखो देखो इतना पैसा खर्च करके ये टेंशन अपने साथ ले जा रहा है, उसका ये भाव था। और कई चीजें बोले, मतलब व्यक्ति इतना धन संपदा टाइम लगा रहा है और अपने साथ क्या ले जा रहा है, टेंशन स्ट्रेस डिफिकल्टीज ले जा रहा है पूरे जीवन के लिए। उसकी स्वतंत्रता अभी खत्म होगी। हम कृष्ण से स्वतंत्र होना चाहते हैं लेकिन माया देवी हमें यहाँ परतंत्र में रखती हैं। तो ऐसे कुछ शब्द जब उनसे कान में चले गए तो जैसे शाम को पहुंचे रात को, तो पूरी रात रामचंद्र कविराज जगे रहे और अपने नई जो पत्नी, फर्स्ट नाइट में भागवतम क्लास का डिस्कशन हो रहा था उनका, और दूसरा दिन सुबह उठते ही रामचंद्र कविराज अपने घर को छोड़ देते हैं और आ जाते हैं श्रीनिवास आचार्य के पास। श्रीनिवास आचार्य से मिलते हैं, वो प्रेम विलास में और बड़ा लंबा डिस्कशन है, फर्स्ट मीटिंग उनका कैसे हुआ। और रामचंद्र कविराज शास्त्रों में बहुत विद्वान थे, तो उनका परीक्षा लेने के लिए श्रीनिवास आचार्य ने उनके साथ एक महान पंडित का डिबेट करवाया, और फिर रामचंद्र कविराज के साथ स्वयं श्रीनिवास आचार्य डिस्कशन में लगे और उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतम इज द मेन जो स्क्रिप्चर है, वो सारे सारे ग्रंथों का। तो रामचंद्र कविराज कहते मैं उसी लिए आपके पास आया हूँ कि श्रीमद् भागवतम को लर्न करना चाहता हूँ मैं आपके आश्रय में। हाँ तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर आया करते थे, तो आज भी वहां वो तीन पेड़ है जिनके नीचे तीनों बैठ के अपना जप करते थे, भागवत रिसाइट करते थे, क्लास करते थे, महीनों महीने वहां रहते थे तीन वैष्णव। तो ऐसा रामचंद्र कविराज का जो प्रेम नरोत्तम दास ठाकुर के साथ हुआ, घनिष्ठ प्रगाढ़ प्रेम। तो नरोत्तम दास ठाकुर तो पूर्वी बंगाल में रहते थे, तो रामचंद्र कविराज वहां उनके साथ रहने गए, खेतुरी ग्राम, हाँ जो पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल उन्होंने मनाया, और उनकी पत्नी हमेशा लेटर लिखती थी नरोत्तम दास ठाकुर को जो ब्रह्मचारी थे कि मेरे उसको क्यों रखा है, कांग्रेगेशन डिवोटी को आपने क्यों रखा है, वहां घर भेजो। हाँ तो ये नरोत्तम कहते नहीं नहीं रामचंद्र आपको जाना पड़ेगा, ये मानते नहीं थे। फिर एक दिन गए, तो गए और कब आए, मिडनाइट वापस आ गए। देखा कि मंदिर खोलने से पहले आसपास का सारा क्लीनिंग, झाड़ू लगा रहे, कचरा उठा रहे, सब कुछ कर रहे रामचंद्र कविराज। नरोत्तम दास अवाक हो गए। तो इसलिए ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र कविराज के साथ बहुत घनिष्ठ रूप में जुड़े थे, जो एक साथ कृष्ण कथा आदि की चर्चा करते थे, श्रवण करते थे। इसी कारण से वो कहते हैं रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, इसलिए मैं संग चाहता हूँ, क्योंकि उनके संग में क्या होता है, कृष्ण आलापन होता है। हाँ ये साधु का गुण है, साधु संग है कृष्ण आलापन, कि साधु के संग में बैठते हैं कृष्ण की चर्चा होगी, आलापन होगा। इसी कारण से वो कहते थे मुझे उनका संग चाहिए। हाँ बल्कि वो गृहस्थ डिवोटी थे रामचंद्र कविराज क्या थे। हाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते मेरे आसुष आज किसी से संग करने का क्राइटेरिया क्या है, वो कहते हैं ग्रहे व हा गौरांग बोले ठाकुर, चाहे वो गृहस्थ है या वन में रहने वाला है, नरोत्तम मांगे तार संग। हाँ जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है, हाँ ऐसे व्यक्ति का मुझे क्या चाहिए, संग चाहिए। हाँ वो एक लाइन में भूल गया, नरोत्तम मांगे तार संग। तो इस प्रकार से रामचंद्र कविराज के बारे में कई और चर्चाएं आती हैं। तो ऐसे रामचंद्र कविराज नरोत्तम दास ठाकुर जब अप्रकट हुए हैं तो वृंदावन आते हैं, सारे वैष्णव से मिलते हैं, और फिर वृंदावन में ही अपना शरीर त्यागते हैं रामचंद्र कविराज। और तो इस प्रकार से रामचंद्र कविराज के बारे में चर्चा हमने की। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु को श्री रंगम में मिले थे, वेंकट भट्ट के पुत्र थे, उस समय वो 11 साल के थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की बहुत अधिक विनम्रता हमें प्रकट होती है, या वो कैसे फेम प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहते थे। जब कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत कंपाइल करने लगे तो दो भक्त, क्योंकि वो सबके पास गए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी ये दो भक्त थे जिन्होंने कहा आप मेरे बारे में कुछ भी मत लिखना। सारे गोस्वामियों के बारे में लिख रहे हैं, रूप सनातन, रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव गोस्वामी, लेकिन किन के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने कहा प्लीज आप मेरा चर्चा मत करो उसमें। तो ये विनम्रता थी, कौन नहीं चाहेगा किताब में अपना नाम, हाँ, क्योंकि कलयुग में नाम की प्रधानता है, या तो कृष्ण का या तो अपना, दोनों में से एक, या तो हम अपने नाम से अटैच हो जाएंगे जप करने में, या तो फिर कृष्ण के नाम से। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु श्रीरंग में मिले, और वेंकट भट्ट से जब 4 महीने के बाद निकलने लगे कहा कि ये गोपाल का मैरिज मत करना, विवाह नहीं करना, इसको तो मैं वृंदावन चाहता हूं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहा कि आप शास्त्रों का अध्ययन करो। गोपाल गोस्वामी सारे इंस्ट्रूमेंट आदि प्ले करने में, कीर्तन करने में, स्क्रिप्चर्स में बहुत प्रवीण थे। हाँ, उनके जो ताऊ थे प्रबुद्ध भट्ट, जो त्रिमल भट्ट बड़े थे, वेंकट भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट, जो प्रबुद्धानंद सरस्वती, और उनसे उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और जब माता पिता अप्रकट हुए तो वृंदावन की ओर चले गए गोपाल भट्ट गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे गोपाल, वृंदावन में तुम जाओगे तो तुम्हारा ध्यान अपने छोटे भाई के समान रूप सनातन रखेंगे, इतना उनका केयरिंग एटीट्यूड था। चैतन्य महाप्रभु को जैसे पता चला कि, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था रूप सनातन को गोपाल भट्ट आएंगे तो मुझे लेटर लिखना, हाँ, तो उन्होंने लेटर लिखा कि गोपाल भट्ट आ गए। तो लेटर उन्होंने टोटा गोपीनाथ मंदिर में पढ़ा, फिर महाप्रभु ने एक लेटर लिखा, इनका ध्यान रखो, और चैतन्य महाप्रभु ने अपना कोपिन उनके लिए भेज दिया, कोपिन डोर बहिर वस्त्र, और एक आसन भेजा। जैसे भेजा तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत अधिक महाप्रभु के प्रति ये हो गए, प्रेम विवल हो गए। तो कहते नहीं नहीं कैसे स्वीकार करो आसन, रूप सनातन ने कहा बैठो, तो कहते महाप्रभु ने यूज किया मैं कैसे बैठूंगा। रूप सनातन कहते ये तुम्हें आगे दीक्षा देने के लिए दिया गया है, इसके बैठकर आपको क्या करना है, दीक्षा देना है। तो श्रीनिवास आचार्य का जब दीक्षा हुआ तो गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन के सामने बिठाया, और उस आसन में बैठकर श्रीनिवास आचार्य को उन्होंने दीक्षा प्रदान की। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही बोला था गोपाल भट्ट गोस्वामी को कि शिला से कृष्ण तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएंगे। भक्ति रत्नाकर में बहुत लंबा वर्णन है गोपाल भट्ट गोस्वामी का, ऐसे ही प्यार है, अद्भुत, कितना 2-3 चैप्टर है, बड़े बड़े 500 प्यार एक एक चैप्टर में है गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। तो उसी में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने पहले कहा कि आपके लिए वो प्रकट होंगे शिला से, दामोदर शिला से। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। और राधा रमन का विशेषता क्या है कि उनका जो विग्रह है वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, कृष्ण है। तो इस प्रकार से जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है कई ग्रंथों की रचना करते, विशेष रूप से वैष्णव के लिए हरि भक्ति विलास उनके साथ मिलके, सनातन गोस्वामी के साथ मिलके उन्होंने कंपाइल किया, षटक्रिया सार दीपिका आदि, कि कैसे सारे संस्कार आदि होने चाहिए, अंतिम संस्कार वैष्णव विधि से कैसे हैं, तो ये सारी चीजें उन्होंने प्रकट की और कई ग्रंथों पर अपना टीका प्रस्तुत किया। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जो बहुत विशेष आचार्य है, और चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में ही जब कृष्णदास कविराज लिखते हैं यही 6 गुरु ये शिक्षा गुरु हमार, ये जो 6 गुरु है, ये 6 गोस्वामी है, ये मेरे कौन है, शिक्षा गुरु है। तो उनमें से गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम लिखते हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, यही 6 गोसाई शिक्षा गुरु अमर, वहां ये लाइन लिखते हैं 6 का नाम देखे। तो इतना ही गोपाल भट्ट गोस्वामी का वर्णन करते हैं, लेकिन बाकी कई जगहों में उनका विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी और रामचंद्रपुरी इन एक का आविर्भाव और एक का तिरुभाव आज है, फिर वैष्णव को हम प्रार्थना कर सकते हैं। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के श्री रामचंद्र कविराज की निदाय गौर प्रेमानंदे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की चैतन्य चरितामृत की गोपीनाथ की निदाय गौर प्रेमानंदे।